इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاك صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر تم میں سے दुनिया में ज्यादा दुरूद पाक पड़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, यह है प्रोग्राम अहकाम नमाज। हम आपको इसमें खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम फजाइल पर बात करते हैं और फिर इसके बाद चंद एक अहकाम नमाज को शामिल किया जाता है और तीसरे सेगमेंट में चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी शामिल सिलसिला किए जाते हैं। बयान सुनने से पहले हुसूल सवाब की खातिर अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, बात है अहकाम नमाज की और नमाज की। हर आकिलो बालिग आजाद और कुदरत रखने वाले शख्स पर नमाज बा जमात अदा करना ये वाजिब है। बगैर किसी उजर के एक बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार है, मुस्तहिक सजा है। और जो ये काम बगैर किसी उजर शरई के कई बार करे तो फुकहाए किराम ने फरमाया कि ऐसा शख्स फासिक है, गुनाहगार है, बल्कि मर्दूदु शहादा है और ऐसे बंदे को शरीयत की तरफ से सजा भी मुकर्रर की गई। और हजरत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नमाज बा जमात से पीछे रह जाने वाला ये जानता कि इस रह जाने वाले के लिए क्या है तो घिसटते हुए वो हाजिर होता। इंसान को जब जजा और सजा का पता चल जाता है तो फिर इंसान उसके मुताबिक सही करता है। बात जब जजा की है तो कोशिश करता है कि मुझे इसके ऊपर बेनिफिट क्या है, वो मुझे हासिल कर लेना चाहिए। और बात जब सजा की होती है कि यानी ये काम अगर आपने ना किया तो फिर गुनाहगार है, तो फिर बंदा ऐसी सूरत में बचने की कोशिश करता है। नमाज पढ़ेंगे सवाब क्या है, जस्तजू करेगा। नमाज बा जमात का सवाब क्या है, कोशिश करेगा। और अगर नहीं करते तो सजा क्या है, अब नमाज बा जमात रह न जाए फिर इस मामले में सही करेगा, यानी किसी न किसी तरीके से मुझे नमाज बा जमात मिल जाए ताकि जो इस वाजिब को ना पाने पर बगैर किसी उजरे शरई के जो सजा मुकर्रर की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ तक लाहिक हो जाए, वो सजा मुझे भुगतनी पड़ जाए, तो इंसान फिर कोशिश करता है। इसलिए उलमा ने लिखा कि अमल पर कोशिश करनी चाहिए कि जजा क्या है उसे भी जाने, और बतौर खास अमल ना करने पर जो गुनाह होता है, जो सजा होगी उसके बारे में भी जाने, ताकि ये डरता रहे, खौफे खुदा रहे, और फिर बंदा उसके मुताबिक अपनी जात को बचाने की कोशिश भी करता रहे। इसलिए हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला ने जो हदीस मुबारक बयान की है उसमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नमाज बा जमात से पीछे रह जाने वाला ये जानता कि इस रह जाने वाले के लिए क्या है तो घिसटते हुए हाजिर होता। नाजरीन, जमात के साथ नमाज पढ़ने से जहां मुसलमानों की आपस में मोहब्बत और मुआनसत में इजाफा होता है वहीं पर नमाज का सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है। अहादीस मुबारका में कई मकामात पर जमात से नमाज पढ़ने वाले के लिए कसीर सवाब और कई इनामात की बशारतें वारिद हैं। आइए चंद एक आपकी गोश गुजार करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही इब्ने खुजैमा की हदीस मुबारक है, जिस बंदे ने कामिल वजू किया, यानी जैसे वजू करने का हक है वैसे उसने वजू कर लिया, फिर उसके बाद फर्ज नमाज के लिए चला और इमाम की इख्तिदा में इसने जाकर फर्ज नमाज पढ़ ली, फरमाया उस बंदे के जो गुनाह है वो बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी जबरदस्त फजीलत है। गुनाह किए थे, उस बाजमात नमाज की बरकत से, कामिल वुजू की बरकत से वो बख्श दिए गए। और दूसरी हदीस मुबारक में फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला बाजमात नमाज पढ़ने वालों को महबूब रखता है, अपना दोस्त बना लेता है। बाजमात नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है, यानी कहां एक और कहां 27, पड़ी एक है और वो बाजमात थी और इसकी बरकत से इसके नामे आमाल में 27 का सवाब लिखा गया, 27 दर्जे अफजल है। और मजीद एक और हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा बाजमात नमाज पढ़े फिर अल्लाह तबारक व ताला से अपनी हाजत के बारे में सवाल करे तो अल्लाह तबारक व ताला इस बात से हया फरमाता है कि बंदा हाजत पूरी होने से पहले पहले वापस लौट जाए, यानी फिर उस बंदे के वापस लौटने से पहले पहले उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, ये भी बहुत जबरदस्त फजीलत है। जमात से नमाज पढ़ने वाले का सरासर फायदा ही फायदा है, और बिलखसूस जो 40 नमाजें बा जमात पढ़ने वाला बन जाए उसके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम का जामे तर्मजी में एक इरशाद पाक है, जो अल्लाह तबारक व ताला के लिए यानी रब की रजा के लिए, जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, अमल कोई भी हो अल्लाह की रिजा मकसूद होनी चाहिए, यह ना हो कि लोगों को दिखाने के लिए अमल कर रहा हूं, क्योंकि यह तो मजमूम है, अमल का सवाब भी खत्म हो जाता है और अल्लाह की रिजा भी नहीं मिलती। और मकसूद क्या है, अल्लाह की रिजा हमें मिले। अमल कोई भी हो, इंसान इतनी मुशक्कत भी करे लेकिन फिर अल्लाह की रिजा नसीब ना हो, तो मकसूद हर अमल में यह होना चाहिए कि हमें इस अमल से अपने मालिक को खालिक की रजा मिल जाए। तो फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व ताला के लिए 40 दिन बा जमात नमाज पढ़े और तकबीर उला पाले उसके लिए दो आजादियां लिख दी जाती हैं, एक फरमाया जहन्नुम की आग से आजादी और दूसरी जो है वो निफाक से आजादी। 40 रोज तकबीर उला के साथ नमाज बा जमात पढ़ने वाला न सिर्फ मुनाफकत से पाक हो जाता है बल्कि वो नारे जहन्नुम से भी अमान पा लेता है। हजरत सैयदना इमाम शरफुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, निफाक से बरात का मतलब इस हदीस मुबारक में यह है कि वो दुनिया में मुनाफिक जैसे आमाल से महफूज रहेगा, यानी जो अमल मुनाफिकों के होते हैं उन आमाल से इसे पना दे दी जाएगी और इस बंदे को मुखलिसीन जैसे आमाल करने की तौफीक मिलेगी। نیز آپ نے فرمایا کہ آخرت میں نارے جہنم سے جہنم کی آگ سے یہ امن میں رہے گا جس میں منافق کو عذاب دیا جائے گا. آپ نے فرمایا یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے. کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جبکہ اس کا جو حال ہے بالکل اس کے برعکس ہے. ناظرین، نماز با جماعت کی اس قدر برکتیں ہیں، اس قدر فضیلتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. اور نماز با جماعت کی اس قدر برکتوں اور فضیلتوں کے باوجود سستی کرنا اور جماعت سے نماز نہ پڑھنا، یہ بھی کس قدر تعجب خیز بات ہے. مگر افسوس، جماعت کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو کوئی رنج ہی نہیں ہوتا، کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی گویا لاحق ہی نہیں ہوئی. مگر ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا تھا جیسے بہت بڑا ان کا نقصان ہو گیا. یہ حضرات، دنیا و ما فیہا، یعنی یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اس سے تکبیر اولا کو زیادہ اہم سمجھتے تھے. اور حقیقت بھی یہی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی تکبیر اولا، فقط تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے تھے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک وہ غم کیا کرتے تھے. مجھے چاہیے کہ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی محبت کو پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. آگے چل کر اس کے جو فوائد ہمیں نظر آئیں گے، آج نظر نہیں آ رہے، لیکن آگے چل کر جو اس کے فوائد ملیں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش کہ کہیں بھی مجھ سے تھوڑی سی بھی غفلت نہ ہوئی ہوتی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مجھے چاہیے کہ ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. چونکہ ہمارا گزشتہ 2 سلسلوں سے نماز جنازہ کے احکام کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو آج بھی اسی حوالے سے ہم چند ایک مسائل کو شامل کرنے جا رہے ہیں. نماز جنازہ کا جو اذکار کا معاملہ ہے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد جو پڑھا گیا، دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد جو پڑھا گیا، جیسے ثنا ہے، پھر درود پاک ہے، پھر دعا ہے، انہیں بلند آواز سے یعنی لاؤڈلی پڑھنا یہ سنت ہے یا آہستہ آواز میں پڑھنا یہ سنت ہے؟ احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں ثنا ہو جو پہلی تکبیر کے بعد ہوتی ہے، درود پاک ہو جو دوسری تکبیر کے بعد ہوتا ہے، یا پھر دعا ہو جو تیسری تکبیر کے بعد ہے، ان سب کے اندر احناف کے نزدیک آہستہ پڑھنا یہ سنت ہے. بلند آواز سے پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا، فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے. سنن نسائی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہنے کے بعد آہستہ آواز سے اذکار پڑھے، پھر بقیہ 3 تکبیریں کہنے کے بعد آخری تکبیر کے وقت سلام پھیر دے. تو اس حدیث مبارک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، اور احناف کا موقف بھی یہی ہے، کہ نماز جنازہ میں جو بھی اذکار ہیں، ثنا، درود پاک یا پھر دعائیں، یہ سب کے سب آہستہ آواز میں پڑھنا یہ سنت ہے. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا یہ کیسا ہے؟ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، علماء نے لکھا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے، چاہے मैयत मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद से बाहर हो, नमाजी मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर हो। हाँ, अगर कोई उजर है, मिसाल के तौर पे इतनी शदीद बारिश हो रही है कि मस्जिद में जनाजा पड़े बगैर कोई चाराकार है ही नहीं, तो उलमा ने लिखा कि फिर इस सूरत में इजाजत दी गई है कि अब चूंकि कोई और जगह ही नहीं नजर आ रही, कोई और जगह मिल नहीं रही और यही एक मकाम रह गया कि जिसे लेंटर पड़ा हुआ है और उसके नीचे आसानी के साथ खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की जा सकती है, तो ऐसी सूरत में फरमाया कि मस्जिद को ये नमाज जनाजा का मकाम बनाया जा सकता है, यानी वहां वक्ती तौर पर पड़ी जा सकती है और ये उजर की वजह से। और अगर उजर नहीं है तो मकरूह तहरीम नाजायज और गुना है, खा मस्जिद में मैयत हो या मस्जिद के बाहर हो, नमाजी मस्जिद में हो या बाहर। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं कि जनाब क्या हुआ, मस्जिद से बाहर मैयत रख लें और नमाजी मस्जिद में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक है ताकि अजर भी मिले। क्योंकि एक हदीस मुबारक हजरत सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, मन सल्ला अला जनाज़तिन फिल मस्जिद फला शय लहू, फरमाया जिसने मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ी तो उसके लिए कोई शय नहीं, यानी उसे इसके ऊपर कोई अजर नहीं मिलेगा। तो जो हुक्म शरा का है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। बल्कि सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हवाले से जब कलाम हुआ तो आपने ये बात इरशाद फरमाई कि जाहिरुर रिवाया में हमारे आयमे सलासा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के नजदीक मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना यह मकरूह है, अगरचे के मैयत बैरून मस्जिद हो यानी मस्जिद से बाहर हो। और फरमाया यही असा है, यही मुख्तार है और यही माखूज है और इसी के मुताबिक हमें अमल करना है। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है कि ये जो तीन औकात मकरूह होते हैं, इनमें नमाज जनाजा पढ़ना और मैयत की तदफीन करना, ये कैसा अमल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आम नमाजें इनमें पढ़ने की इजाजत नहीं है तो क्या नमाज जनाजा पढ़ना भी ममनू है या तदफीन करने की भी इजाजत नहीं है? उलमा ने इस हवाले से ये जवाब दिया कि जनाजा जनाजगाह में अगर पहले से ही मौजूद था, जनाजा ले आए हुए हैं और जनाजगाह में रख दिया गया है, अभी मकरूह वक्त शुरू नहीं हुआ लेकिन इतनी ताखीर की गई कि मकरूह वक्त शुरू हो गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं या कह दिया कि भाई आप वजू करने, लोग चंद एक वजू कर रहे हैं, या फिर वहां खिताब शुरू कर दिया गया हालांकि वक्त बहुत कम था, यहां तक कि इतनी ताखीर की गई कि मकरूह वक्त शुरू हो गया, तो अब मकरूह वक्त में नमाज जनाजा अदा करना यह मकरूह तारीमी नाजायज है। अब हक यह है कि इंतजार किया जाए जब वो मकरूह वक्त खत्म हो जाए, हाँ वो सुबह का जब सूरज तुलू होता है उस वक्त का वक्त है, या फिर गुरूब आफ्ताब वाला मकरू वक्त है, या फिर दोपहर में जब जवाल का वक्त होता है, सूरज बीच में आसमान पर आ जाता है, तो उस वक्त में ये तीनों औकात में से कोई भी वक्त हो तो फिर ऐसी सूरत में इंतजार करना चाहिए। इंतजार करें, जैसे ये गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद नमाज जनाजा अदा की जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैयत को जनाजा गाह में लाया ही उस वक्त गया कि जब मकरूह वक्त शुरू हो चुका था, यानी जनाजा उठाया आते हुए रास्ते में इतनी ताखीर हो गई कि जब जनाजगाह में दाखिल हुए तो मकरूह वक्त पहले से ही शुरू हो चुका है, तो इस सूरत में उलमा ने लिखा कि बिला कराहत नमाज जनाजा पढ़ना ये जायज है। और ये तो है नमाज जनाजा पढ़ने का मामला। जहां तक बात तदफीन की है तो फरमाया मकरू औकात में भी तदफीन की जा सकती है, शरण इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक हम रिकॉर्डेड सवालात भी शामिल करते हैं। जी सवाल चलाइए।
मेरा मुख्तसर से ये सवाल है कि नमाजी ने भूल कर सजदा साहब के दो सजदों में से एक सजदा करके नमाज मुकम्मल कर ली, तो इस नमाज के बारे में क्या हुक्म है?
किसी शख्स को नमाज में सहव वाकई हो गया यानी गलती हो गई, लेकिन उसने भूल कर दो सजदों की बजाय एक ही सजदा किया, यानी जब सजदा सब वाजिब हो जाता है तो दो सजदे करने होते, एक तरफ सलाम फेर कर जो तरीका कार है उसके मुताबिक दो सजदे करके दोबारा बैठना होता है, तो ये दो सजदे करने की बजाय सिर्फ एक ही सजदा किया और फिर उसके बाद सलाम अपनी नमाज कंप्लीट करने के बाद फेर दिया। तो ये एक सजदा जो किया गया है ये काफी नहीं होगा, क्योंकि भूल कर जब गलती हो जाती है तो गलती की तलाफी के लिए दो सजदे करना ये लाजिम है, इन्हें हम सजदा साहब कहते हैं। ये सजदा साहब अगरचे एक वाहिद है लेकिन इसमें दो सजदे होते हैं जो कि वाजिब है, ये करना जरूरी है। अगर एक सजदा किया तो ये किफायत नहीं करेगा। हदीस मुबारक में और सहाबा किराम अलैहि मुर्दवान का जो अमल है वो यही साबित है कि दो सजदे किए जाएंगे, लिहाजा अगर किसी बंदे ने एक सजदा कर दिया और सलाम फेरने के बाद जैसे उसने नमाज मुकम्मल कर ली और इसे फौरन याद आ गया कि मैंने तो सिर्फ एक सजदा किया, एक सजदा मेरा भी बाकी है, तो अगर इसने कोई ऐसा काम न किया हो जो नमाज के मुनाफी है, जैसे गुफ्तगु शुरू कर देना ये नमाज के मुनाफी है, इसी तरह मस्जिद से बाहर निकल जाना ये नमाज के मुनाफी है, तो किसी और काम में शुरू हो गया ये नमाज के मुनाफी है, कोई और नमाज शुरू कर दी तो ये भी पहले वाली नमाज के मुनाफी है, तो अगर कोई और काम इसने अभी ऐसा कि जो मुनाफी सलात मुनाफी नमाज हो वो शुरू ना किया हो तो उधर ही बैठे बैठे ये एक सजदा जो रह गया था वो कर ले, खाली सिर्फ एक यही सजदा, मजीद और कुछ नहीं, एक सजदा करने के बाद बैठ जाए और फिर उसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ने के बाद फिर ये सलाम फेर दे, इसकी नमाज कंप्लीट है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसने कोई ऐसा काम सलाम फेरने के बाद शुरू कर दिया है कि जो नमाज के मुनाफी होता है, जैसे गुफ्तगु शुरू कर दी है या मस्जिद से उठकर चला गया है, तो इस सूरत के अंदर चूंकि इसके ऊपर वाजिब था ये एक सजदा और करता लेकिन वो इसने नहीं किया तो नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इआदा है, अब इससे दोबारा उस नमाज का इआदा करना लाजिम रहेगा। अगरचे के फर्ज साकित हो चुका है लेकिन इस नुक्स की वजह से, इस मकरूह तहरीमी अमल की वजह से इस पर लाजिम है कि ये उस नमाज का इआदा करे, बरी जिम्मा हो जाएगा। मजीद सवाल चलाइए।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि रुकू और सजूद में तीन से ज्यादा बार तस्बीहात पढ़ सकते हैं?
अगर तो ये नमाज पढ़ने वाला अकेले नमाज पढ़ रहा है, यानी जमात के साथ नहीं है, इमाम नहीं है, तो अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए मुस्तहब और अफजल ये है कि वो तीन से ज़ायद बार तस्बीहात पढ़ ले, जैसे हम अपने नवाफिल पढ़ रहे होते हैं या सुन्नत मुअक्कदा या सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं। तो अकेले नमाज पढ़ने वाला जो है ये इजाफी तीन से जायद तस्वीहात कहे, ये इसके लिए अफजल है और मुस्तहब भी यही अमल है। अगर फर्ज कर ले सिर्फ तीन ही कहता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, ज्यादा कहता है तो गोया इसने अफजल पर अमल किया। लेकिन अगर ये तस्वीहात कहने वाला इमाम है और इसके पीछे मुक्तदी है, और अगर ये तीन से जायद तस्वीहात कहेगा तो मुक्तदियों पर शाक गुजरेगा, परेशान हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में इसे चाहिए कि सिर्फ तीन बार ही कहे, तीन बार से ज्यादा ना करे। ये इमाम के लिए हुक्म है और मुक्तदियों के लिए कि वो अगर इमाम साहब तीन बार ही कहते हैं और तीन बार वो आहिस्ता आराम से कहते हैं और ये पीछे नमाज पढ़ रहे ये तीन से ज्यादा बार कह लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जब भी तस्बीहात तीन से जायद बार कही जाए तो ताकद होनी चाहिए, तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात या फिर नौ, जितनी बार भी कहेंगे ताक अदद को मलहूज रखना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, हम आपसे इजाजत चाहते हैं और दुआगो भी हैं। अल्लाह करीम हम सब ने जो कुछ भी सुना है सुनाया है हमें इसे याद रखने और अमल करने की तौफीक से नवाजे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हर इबादत से बरतर इबादत नमाज। सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज़, इबादत से बढ़कर इबादत नमाज़।